धवला लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः
सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, सिद्धमनंतमणिन्दिय मणुवमम पत्थसोखमणवच्चं, केवलपहोह निज्जिय दुन्नयति मिरंजिनम नमः। इस षटखंडागम शास्त्र पर जो वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, उसका आज से हमारा द्वितीय बार यह पढ़ना प्रारंभ हो रहा है। 2003 से हमने इसको शुरुआत किया था और 16 पुस्तकों की अपनी बात यहाँ हुई थी। धवला के बाद जय धवला, महाधवला, त्रिलोकसार आदि की बात हुई अपनी बहुत विस्तार से। अब दोबारा हम यहाँ ये धवला ग्रंथ को आद्योपान तभी हम फिर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ एक नंबर के पृष्ठ से शुरू करेंगे। वैसे तो हमने ये सारे प्रस्तावनाएं वगैरह पहले पढ़े थे हमने पहली बार, अभी अभी फिर दोबारा पढ़ लेना। ओम श्री भगवंत पुफदंत भूतबलि पणिदे छखंडागमे जीवठाणम तस् श्री वीरसेनाइरिय वीरैया टीका धवला। ने श्री भगवान पुष्पदंत और भूतबलि प्रणित षटखंडागम में यह जीव स्थान है, जीवठाण, और उसकी जो श्री वीरसेन आचार्य रचित यह धवला टीका है। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा है उसका अर्थ देखते हैं। जो सिद्ध है, अनंत स्वरूप है, अनंत ऊपर लिखा ना, और अनिंद्रियम अनिंद्रिय है, अनुपम है, अनुवमम, और अपत्थ सुखम अनवज्जम, अपत्थ ने आत्मस्थ सुख को प्राप्त है, अनवज्जम इन्हें अनवद्य अर्थात निर्दोष है। देखो कितने कितने उनके उदाहरण देखे हमने, जो सिद्ध है, अनंत स्वरूप है, अनिंद्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ सुख को प्राप्त है, अनवद्य ने निर्दोष है, और जिन्होंने केवल ज्ञान रूप सूर्य के प्रभापुंज से कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है। केवल पहोह, पहोह है ने वो प्रभापुंज, निज्जीय इन्हें जीत लिया है। किसको? दुन्नयति मिरम, कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है, ऐसे जिन भगवान को नमस्कार को। ये सिद्ध भी उनका विशेषण बना है क्या? अथवा जो अनंत स्वरूप है, अनिंद्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ सुख को प्राप्त है, अनवद्य अर्थात निर्दोष है, जिन्होंने केवल ज्ञान रूप सूर्य के प्रभा पुंज से कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है, और जो समस्त कर्म शत्रुओं के जीतने से जिन संज्ञा को प्राप्त हुआ है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करो। यानी पहले में उन्होंने ऐसे जिन को, यानी वो जो सिद्ध है उसको विशेषण बनाया, और दूसरे में सिद्ध भगवान के ये विशेषण बनाए, इसी का विशेषार्थ। ग्रंथ प्रारंभ सिद्ध इस पद से करने का प्रयोजन यह सूचित होता है। ग्रंथ की शुरुआत ही सिद्धम अनंतम वगैरह की ना उन्होंने, अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा, सिद्धम अनंतम अनिंद्य, तो तो सिद्ध शब्द से ग्रंथ की शुरुआत की। तो क्या सूचित होता है कि प्रारंभ में सकार का प्रयोग सुखदायक माना जाता है। सकारिणी स शब्द स अक्षर, हाँ संकार लिखा है, सहौ सुहदाहदौ।
वो स का ऊपर अनुस्वार,
एक मिनट मैं देखती हूँ, मुझे दिखा नहीं बराबर।
के ऊपर अनुस्वार साइड में वो गलती से छपन
नीचे उसका, उन्होंने नीचे उसका रेफरेंस है फुटनोट में, वहाँ सकार लिखा है। वो संकार नहीं चाहिए, सकार ही चाहिए।
संकार जैसा वो साइड में गुंडी पड़ी है ना, वो गलत है।
नहीं, सकार का प्रयोग सुखदायक माना जाता है, उसके लिए नीचे देखो। आदव सकार प्रयोग सुखद, आदव ने शुरुआत में सकार का प्रयोग सुखदायक माना है। तथा च सहु सुखदाहदौ, ऊपर लिखा था सहु सुखदाहदौ, ये अलंकार चिंतामणि उसमें से ये बात बताई है। सकार सुखदायक होता है तथा हकार दुखदायक होता है, यानी ह से शुरुआत तो दुखदायक बताई है अभी। नीचे उसके वो सारे व्याकरण उन्होंने बताए। अब हम आगे पढ़े, हाँ पेज नंबर 2 है, पहली पुस्तक निकाली ना आपने दौला की, तो जहाँ पहला वो सिद्धम अनंतम अनिंदीय वो जो हुआ है वो अभी हमने देखा, मंगलाचरण उसका अर्थ देखा, उसका विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। विशेषार्थ की शुरुआत में ही लिखा है कि सकार का शुरुआत में उन्होंने सिद्ध शब्द क्यों डाला, कि स से शुरुआत होने वाली बातें सुखदायक मानी गई। हाँ ये कहे अभी उन्होंने बताया, और हकार दुखदायक बताया। अब जो चौथी लाइन से हम पढ़ रहे हैं, सिद्ध शब्द का अर्थ कृतकृत्य होता है, अर्थात जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्यों को कर लिया है, जिन्होंने अनादिकाल से बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों को प्रचंड ध्यान रूप अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है, ऐसे कर्म प्रपंच मुक्त सिद्धों को, जीवों को सिद्ध कहते हैं। कर्म प्रपंच मुक्त जीवों को सिद्ध कहते हैं। अरहंत परमेष्ठी भी चार घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं, इसलिए वे भी घाती कर्म क्षय सिद्ध है। ये उनका दूसरा नाम है, घाती कर्म क्षय सिद्ध, यानी सिद्ध कहकर उसके घाती कर्म क्षय सिद्ध, और वो बाकी तो आठों कर्मों से मुक्त वाले सिद्ध हैं। इस विशेषण से जो अनादि काल से ही ईश्वर को कर्मों से अस्पृष्ट मानते हैं, ऐसे सदाशिव, सदाशिव ने हमेशा ही मोक्ष स्वरूप और सांख्य मत का निराकरण हो जाता है। सदाशिव नाम का मत है और सांख्य अलग है, वो सांख्य भी वो तो हमेशा ईश्वर पहले से ही मानते हैं। देखो पहले बात ये भी आई थी जैनियों में भी, जैसे हम कहते ना कोई जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है तो अनादि से वो सिद्ध है, ऐसे भी किसी का कहना है, तो वो बात बराबर नहीं है। जो जो सिद्ध थे हुए हैं वो पहले संसारी थे ही, तो कोई पूछते तो फिर जहाँ बिगिनिंग हुई वहां तो कोई सिद्ध नहीं था ना, तभी तो कोई सिद्ध होने चाहिए, तो बिगिनिंग ही नहीं थी ना, बिगिनिंग ही नहीं है, तो जो जो सिद्ध हुए वो पहले संसारी थे, इस तरह से लेना उसका। अनादिकाल से सिद्ध भगवान है, परंतु कोई जीव कभी संसारी नहीं था, सिद्ध ऐसा बोलने वाले है वो बात नहीं बराबर, वो बात बराबर नहीं। स्वामी जी ने भी ये बात निकाली थी कहीं, किसी प्रवचन में आई थी, कोई जीव अनादि का सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ यानी नाना जीवों की अपेक्षा अनादि काल से सिद्ध भगवान है वो कहेंगे हम, पर कोई पर्टिकुलर जीव पहले संसारी नहीं था और सिद्ध ही था अनादि से, ऐसा नहीं हो सकता। अथवा सिद्धु धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध शब्द का यह अर्थ होता है कि जो शिवलोक में पहुंच चुके हैं और वहां से लौटकर कभी नहीं आते, इस कथन से मुक्त जीवों के पुनरागमन की मान्यता का निराकरण हो जाता है। वो निराकरण हुआ है, उसको निराकरण करना, जो पहली बार पहले हमने कुछ कुछ किया हुआ है। अथवा सिधु धातु संराधन के अर्थ में भी आती है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि जिन्होंने आत्मीय गुणों को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिनकी आत्मा में अपने स्वाभाविक अनंत गुणों का विकास हो गया है, विकास हो गया है। इस व्याख्या से जो मानते हैं कि जिस प्रकार दीपक बुझ जाने पर न वह पृथ्वी की ओर नीचे जाता है, न आकाश की ओर ऊपर जाता है, न किसी दिशा की ओर जाता है और न किसी विदिशा की ओर जाता है, किंतु तेल के क्षय हो जाने से केवल शांति अर्थात नाश को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त होता हुआ जीव भी न नीचे भूतल की ओर, न ऊपर नभस्थल की ओर, न किसी दिशा की ओर और न किसी विदिशा की ओर ही जाता है, किंतु स्नेह अर्थात राग परिणति के नष्ट हो जाने पर केवल शांति अर्थात नाश को ही प्राप्त होता है, उस बौद्ध मत का निरसन हो जाता है। यानी है वहीं पर वो नष्ट हो जाता है, ऐसा शांत हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। पहला शब्द था सिद्ध, अब दूसरा अनंत, इसलिए ऊपर सिद्ध के ऊपर एक आंकड़ा लिखा है, यहाँ दो आंकड़ा लिखा है, और उसके लिए नीचे फुटनोट में भी है, देखो उसके लिए फुटनोट में बताया। हाँ, वो विशेषणों के नंबर नहीं है, फुटनोट के नंबर है, नीचे लिखा है, पहले पढ़ेंगे। न अस्य अंतो अस्ति इति अनंत, यानी इसका अंत नहीं इसलिए अनंत है। निरन्वय विनाशेन अविनश्यमान है, यानी बिल्कुल पूरे के पूरा विनाश से वो अविनश्यमान है। न अस्य अंतः सीमा अस्ति अनंतः, यानी एक में जिसका नाश नहीं होता वो अनंत है, अंत नहीं है, और जिसकी सीमा नहीं है वो अनंत है। केवल आत्मना अनंतत्वात् अनंतार्थ विषयत्वात् वा अनंतः, या उसका विषय अनंत है इसलिए भी उसको अनंत कहते हैं। अनंतार्थ विषय ज्ञान स्वरूपत्वात्, यानी जिसका विषय है अनंत है ऐसे ज्ञान स्वरूप होने से, यानी केवल ज्ञान में होने से। अनंत कर्मांश जयनाद अनंत, यानी अनंत कर्मांशों को जीतने वाले इसलिए अनंत है। अनंतानिवाद ज्ञानादीनी यस्य इति अनंत, अभी इसी का हिंदी ऊपर बताएंगे। जिसका अंत अर्थात विनाश नहीं उसे अनंत कहते हैं। अथवा अंत शब्द सीमा वाचक भी है, इसलिए जिसकी सीमा न हो उसे भी अनंत कहते हैं। यानी जिसका विनाश नहीं वो अनंत, जिसकी सीमा न हो वो भी अनंत है। अथवा अनंत पदार्थों को जानने वाले को भी अनंत कहते हैं। अथवा अनंत कर्मों के अंशों को जीतने वाले को भी अनंत कहते हैं। अथवा अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त होने के कारण भी अनंत कहते हैं, यानी अनंत गुण लिए उन्होंने। शुरुआत में उसके सारे जो ये देते हैं ना, वो कोश कौन सा है, अभिरा कोश ऐसा लिखा है ना, ये जो ग्रंथों के शॉर्ट फॉर्म देते हैं ना, उसकी एक लिस्ट होती है शुरुआत में। देखो वो जहाँ विषय सूची है ना अनुक्रमणिका 82 पेज से शुरुआत हुई थी, उसके पहले 81-80 पेज पर है अभिराग है अभिधान राजेंद्र कोश मिला क्या संकेत सूची लिखा है वहां पर, ये सारे शॉर्ट फॉर्म वहां लिखे हैं, ये ग्रंथों के जो जो नाम लिखे ना उसकी बात वहां आती है। अब अनिंद्रिय इसके लिए भी एक यानी फुटनोट का आंकड़ा लिखा है, नये विजय तक गहने लिंगम पी अनिंद्रिय तणवो ये पांच सम कोश। अभी पांच सम कोश देख लो क्या है, यहाँ तो उसका कुछ नाम नहीं है, पास कुछ चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर पढ़ेंगे हम तीन पेज पर तीसरी लाइन से, जिसके इंद्रिया ना हो उसे अनिंद्रिय कहते हैं, इंद्रिया अर्थात भावेंद्रिया छद्मस्थ दशा में पाई जाती है। तो भावेंद्रिय किसको कहते हैं, सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय को भावेंद्रिय कहते हैं। तो भावेंद्रिया छद्मस्थ दशा में पाई जाती है, छद्मस्थ समझते हैं ना बारहवें तक, क्योंकि छद्मवें आवरण है वहां, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण है पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें तक, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छद्मस्थ दशा को उल्लंघन करके यानी वो पहले छद्मस्थ थे अब उसको पार करके केवल ज्ञान से विभूषित है इसलिए वे अनिंद्रिय है। भावेंद्रियों की तरह इन दोनों परमात्माओं के भाव मन भी नहीं पाया जाता, क्योंकि तेरहवें गुणस्थान में सावशमिक ज्ञानों का अभाव है। क्या कहते हैं ये भाव मन भी क्या है, भाव मन ये भी सावशम ज्ञान की परीक्षा, मन संबंधी जो ज्ञान है उसकी बात है। अथवा अनिंद्रिय पद अतीन्द्रिय के अर्थ में भी आता है, अनिंद्रिय या अतीन्द्रिय, जिससे यह अर्थ निकलता है वे हमारे इंद्रियजन्य ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, अर्थात वे दोनों परमात्मा इंद्रियों के अगोचर है। अनिंद्रिय पद का अर्थ अनिंदित भी होता है, जिसका यह तात्पर्य है सिद्ध अरहंत परमेष्ठी निर्दोष होने के कारण सबके द्वारा अनिंदित है, निंदा उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकार के दोष पाए जावे, जिसका आचरण दूसरों के लिए अहितकारी अहितकर हो, ये आहितकर का अहितकर करना, परंतु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि दोषों से रहित होने के कारण उनके स्वरूप को जानने वाला कोई भी उनकी निंदा नहीं कर सकता इसलिए वे अनिंदित हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें से छपे ना सोलापुर से, वो नहीं के ऊपर कहीं पर भी बिंदिया नहीं है, यानी हिंदी के अनुसार इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो हमने उसको नहीं सुधारा है, इसे ही रख दिया था। अनुपम, अनुपम के लिए नीचे लिखा है लोके तत्सदृशो ही अर्थ कृष्णे अपि अन्यो न विद्यते, यानी लोक में विश्व में उसके समान अर्थ वाला कोई भी अन्य नहीं विद्यमान है, उसको अनुपम, क्योंकि उपमा देने के लिए ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं, उसको कहेंगे अनुपम। उपमीयेत तद्येन तस्मान निरुपमम स्मृतम, निरुपम उसी को कहा या अनुपम उसी को कहा, ये जयधवला की बात है 1219। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उनके स्वरूप निर्णय के लिए हम जो कुछ भी दृष्टांत देकर शब्दों द्वारा उसे मापने का प्रयास करते हैं, उस मापने को उपमा कहते हैं। उप अर्थात उपचार से जो माँ माप करे वह उपमा है। उपचार से मापने का भाव यह है, एक वस्तु के गुणधर्म किसी दूसरी वस्तु में तो पाए नहीं जाते, इसलिए आकार, दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मों में थोड़ी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का ठीक कथन तो नहीं हो सकता, फिर भी दृष्टांत द्वारा दूसरी वस्तु का कुछ न कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को उपमा में लिया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया उन्हीं पदार्थों में घटित हो सकती है जो इंद्रिय गोचर है। सिद्ध परमेष्ठी तो अतीन्द्रिय है, अरहंत परमेष्ठी का शरीर इंद्रिय गोचर होते हुए भी उनकी पुनीत आत्मा का हम संसारी जन इंद्रिय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसलिए उपमा द्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है। उन्हें यदि कोई भी समुचित उपमा दी जा सकती है तो उन्हीं की दी जा सकती है जो कि सर्वथा छद्मस्थ ज्ञानियों के अप्रत्यक्ष है। अतः सिद्ध और अरंत परमात्मा को अनुपम अर्थात उपमा रहित कहना सर्वथा युक्ति युक्त है, यानी युक्ति संगत है, ये ठीक है। उप का अर्थ पास भी होता है, अर्थात ऐसा कोई पदार्थ जिसके लिए उसकी उपमा दी जाती हो, पास का अर्थात उसका ठीक तरह से बोध कराने वाला होना चाहिए। परंतु संसार में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध और अनंत परमेष्ठी के स्वरूप की तुलना कर सकें, अतएव वे अनुपम है। अब कहते आत्मस्थ सुख, उसके लिए नीचे उद्धरण दिए हैं, ऐसयमाद समुत्थम विषयातीदम अनोवममनंतम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धवोगप सिद्धानम। ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान और या अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय इंद्रिय सुख की कंपैरिजन करते हुए उसकी बात यहाँ बताई है। सपर बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तहा। ये जो इंद्रिय सुख की बात वहाँ बताई है, जो दुख ही है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है ना, स्व पर बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध कारण है, विषम है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त है, वो सुख नहीं है, दुख ही है। रत्नगण शावकाचार में भी लिखा है, कर्म पर वशे शांते दुख अंतरितोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। यानी कर्म परवश है, अंत सहित है, दुख ही अंतरित उदय, दुखों से ही वो अंतरित होता है। देखो इसका अर्थ इसमें आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। आत्मस्थ सुख, सुख जीव का सहज सिद्ध स्वाभाविक गुण होने से, आत्मा में सदैव विद्यमान है। कर्मों के अभाव में वह स्वाभाविक गुण प्रकट होता है, इसलिए भगवान परमात्मा आत्मस्थ सुख स्वरूप है। इंद्रियजन्य सुख दुख आत्मा के सुख गुण की ही विभाव पर्याय है, यानी इंद्रिय सुख भी सुख गुण की विभाव पर्याय है। कर्मोपाधि नष्ट होने पर वह आत्मस्थ सुख गुण आत्मा से ही उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, वो पर्याय में प्रकट होता है। गुण तो है अनादि से, जिस आत्मस्थ गुण के द्वारा आत्मा शांति, संतोष या आनंद का चिरकाल तक अनुभव करे उसे सुख कहते हैं। संसारी जीव कोमल स्पर्श में विविध रस परिपूर्ण उत्तम सुस्वादु भोजन के स्वाद में, देखो पांचों इंद्रियों के विषय लिए, वायुमंडल को सुरभित करने वाले नाना प्रकार के पुष्प इत्र तेल आदि सुगंधित पदार्थों के सूंघने में, रमणीय रूपों के अवलोकन में, श्रवण सुखकर संगीतों के सुनने में और चित्त में प्रमोद उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के विषयों के चिंतवन में आनंद का अनुभव सा करता है। यानी कोई स्पर्श में, स्वाद में, सुनने में, अवलोकन में, सुनने में और चिंतवन में, और उससे अपने को सुखी भी मानता है। पर यथार्थ में देखा जाए तो इसे सुख नहीं कह सकते। सुख जिसे कहना चाहिए वह तो आकुलता के अभाव में ही उपलब्ध हो सकता है, परंतु इन सब विषयों के ग्रहण करने में आकुलता देखी जाती है, क्योंकि प्रथम तो इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का उपलब्ध होना ही अशक्य है, इसलिए आकुलता होती है। यानी जब तक वो सामग्री नहीं प्राप्त है तब तक उसकी आकुलता बनी रहती है, दैव वशात। यानी जो कर्म निमित्त है ना उसमें अंदर, इसलिए दैव वशात उक्त सामग्री यदि मिल भी जाए तो उसे चिरस्थाई बनाने के लिए, यानी वो लंबे काल तक टिकना भी चाहिए तो चिरस्थाई बनाने के लिए और उसे अपने अनुकूल परिणमाने के लिए चिंता करनी पड़ती है। पहले में पहले सामग्री मिलना अशक्य है, मिल भी जाए तो उसको चिरस्थाई और अनुकूल अपने अनुकूल होने के लिए चिंता करनी पड़ती है। इतना सब कुछ करने पर भी उस सामग्री से उत्पन्न हुआ सुख चिरस्थाई ही रहेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में न किसी का सुख चिरस्थाई रहा है और न कोई प्राणी ही वो सामग्री रह जाए और यही चला जाए
सामग्री भोगने वाला चिरस्थाई नहीं है।
फिर इस सुख में रोग, शोक, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि निमित्तों से सदा ही सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। जिससे वह सुखद सामग्री ही दुखकर हो जाती है। यदि इतने से ही बस होता तो भी ठीक था, पर वह सुख पाप का बीज है, क्योंकि संसार में सुख की सामग्री परिमित है और उसके ग्राहक अर्थात उसके अभिलाषी असंख्य है। अभी यहाँ अनंत इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको अभिलाषी करने वाले अभी हम मनुष्यों की अपेक्षा देखेंगे, चिरंजीवों की अपेक्षा देखेंगे, इसलिए असंख्य कह दिया। देखो क्या कहने जाते हैं, संसार में सुख की सामग्री परिमित है और उसको चाहने वाले ग्राहक हैं, उसके अभिलाषी असंख्य है। हम कहते कोई चीज है जो अभी लौकिक की बात करते हैं तो एक ही चीज को चाहने वाले अनेक जीव होते हैं, और आत्मिक सुख है जिसका उसके पास है तो उसके लिए कोई वहाँ कॉम्पिटिटर नहीं है, वो पूरा का पूरा उसको उपलब्ध हो जाए। ये तो सुख किसके नसीब में कितने मिलेगा, वो कोई भी चीज है वो किसके खाते में कितनी हो सकती है, हो सकता है किसी एक को मिल जाए तो उसके शत्रु कितने हो गए अन्य। अतः जो भी व्यक्ति सुख की आवश्यकता से अधिक सामग्री एकत्रित करता है, यथार्थ देखा जाए तो वह दूसरों के न्याय प्राप्त अंश को छीनता है, इसलिए यह सुख पाप का बीज है। फिर यह सुख आरंभादि निमित्तों से अनेकों जीवों की हिंसा करने के बाद ही तो उपलब्ध होता है। यानी वो प्राप्त करने के लिए कितना ही आरंभ करता है, अतः कर्मबंध का कारण भी है। अतः यह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख सुख न होकर यथार्थ में दुख ही है। किंतु जो आनंद, जो शांति स्वाधीन है अर्थात बाह्य पदार्थों की अपेक्षा न करके केवल आत्मा से उत्पन्न होती है, बाधा रहित है, हमने ऊपर देखा था ना रोग शोक इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वगैरह कितनी बातें आती हैं, अविच्छिन्न एक धारा से प्रवाहित होकर सदाकाल स्थाई है। नवीन कर्मबंध कराने वाली भी नहीं है, दूसरों के अधिकार नहीं छीनने से पाप का बीज भी नहीं है, उसे ही सच्चा सुख कहा जा सकता है। सो ऐसा आत्मस्थ अनंत सुख सिद्ध अरहंत परमेश जी के ही संभव है, अतः उक्त विशेषण देना सार्थक एवं समुचित ही है। पांच नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। अनवद्य, अवद्य पाप या दोष को कहते हैं, और अनअवद्य यानी अनवद्य यानी दोष रहित, निर्दोष कहो या पाप रहित ऐसा कहेंगे। गुणस्थान क्रम से आत्मा के क्रमिक विकास को देखते हुए, इस सब जगह विकास लिखा है, यह भली भांति समझ में आ जाता है कि जो जो आत्मा विशुद्धि मार्ग पर अग्रेसर होता जाता है, त्यों त्यों उसमें से मोह राग द्वेष काम क्रोध मान माया मत्सर लोभ तृष्णा आदि विकार परिणति अपने आप मंद या क्षीण होती हुई चली जाती है। यहाँ तक कि एक वह समय आ जाता है जब उन समस्त विकारों से रहित हो जाता है। इसी अवस्था को मंगलकार ने यानी वो मंगलाचरण करने वालों ने अनवद्य या निर्दोष शब्द से प्रकट किया है। केवल प्रभव निर्जित दुर्नय तिमिर, हमने उसको प्राकृत में पढ़ा था, केवल पहो निज्य दुर्नय तिमिर। इसके लिए नीचे एक में लिखा क्या है, ज ए तह अन्य पत्ययम दुनया नया सौवे निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, यानी दुर्नय किसको कहा उसके लिए यहाँ ये अलग अलग ग्रंथों के यहाँ उदाहरण दिए, अष्ट सहस्र से में से लिया है। देखो तद अनेकांत प्रतिपत्ति ही प्रमाणम, जिससे अनेकांत की प्रतिपत्ति होती ज्ञान होता है वो प्रमाण है। एक धर्म प्रतिपत्ति नहीं है, एक धर्म का ज्ञान होता है तो नय है। तत् प्रत्यनीक प्रतिक्षेपो दुर्नय, केवल विपक्ष विरोध दर्शने स्व पक्षाभिनिवेशात। अभी इसी की बात यहाँ करेंगे ऊपर। देखो केवल प्रभोग निर्जित दुर्नय तिमिर, यानी वो क्या है, दुर्नय रूपी अंधकार को जीतने वाले हैं। अन्य दृष्टि भेदों की अपेक्षा रहित केवल एक दृष्टि भेद को ही दुर्नय कहते हैं। देखो ये नय को यहाँ दृष्टि भेद कहा, तो कहते नय कैसे होते, सापेक्ष होते, अन्य नयों की वहां अपेक्षा पाई जाती है, क्योंकि प्रमाण में सभी नय गर्भित है, तो प्रमाण से जानी हुई वस्तु के किसी अंश को, यानी पूरी वस्तु को उस अंश रूप से हम देखते हैं तब उसको नय कहते हैं, परंतु हम उस वस्तु को एक अंश से देख रहे हैं पर वहां पर बाकी सारे के हमें स्वीकार है, उसको कहते हैं वो नय जो है वो सापेक्ष होते हैं। और जो सर्वथा एक ही अंश रूप से पूरी वस्तु को देखता है उसको कहेंगे दुर्नय, यही कह रहे हैं यहाँ पर। अन्य दृष्टि भेदों की अपेक्षा रहित यानी अन्य सापेक्ष से रहित, यानी जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष, केवल एक दृष्टि भेद को ही दुर्नय कहते, केवल यानी सर्वथा, उसको नय भी नहीं कहेंगे, उसको दुर्नय कहेंगे। इससे पदार्थ का बोध तो होता है परंतु वह बोध केवल पक्षग्राही रहता है, केवल पक्षग्राही मान लेते ना मैं वस्तु किसी अपेक्षा अनित्य कही, वस्तु को पर्याय की अपेक्षा से वस्तु को अनित्य कहा, पर्याय को अनित्य नहीं कहा, वस्तु को पर्याय की अपेक्षा अनित्य कहा। अब इसको नए अगर हम उसको वहां नित्यता की अपेक्षा है और उसका स्वीकार है, उसका स्वीकार नहीं करेंगे मात्र वस्तु को ही अनित्य मानेंगे तो ये दुर्नय हो गया।
केवल का अर्थ
मात्र, केवल का अर्थ मात्र, सिर्फ ओनली,
आपने सर्वथा बोला इसको,
क्या
केवल का अर्थ आपने सर्वथा,
सर्वथा में ऐसे कहे कि वस्तु को अगर सर्वथा हम वैसा मानेंगे तो, यानी के सर्वथा केवल इसी पक्ष को ग्रहण किया ना, उसका अर्थ क्या, वस्तु सर्वथा अनित्य हो गई तो वो दूर नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। वह बोध केवल पक्षग्राही रहता है, केवल पक्षग्राही रहता है, मात्र उसी पक्ष को ग्रहण करने वाला है, उसको हम कहेंगे वो तो एकांत हो जाएगा। इससे प्राणी मात्र किसी पदार्थ की समीचीनता का अनुभव नहीं कर सकते, समीचीनता यानी यथार्थता, इसलिए यानी सच्चाई नहीं जान सकते, इसलिए इसके द्वारा पदार्थ को जानते हुए भी उसके विषय में जानने वाले अंधे ही बने रहते हैं। ये अंधे क्यों कहा, ये तो आपको सबको कथा मालूम है ना, हाथी की तो साथ अंधों ने पकड़ लिया हाथी को, एक कहता है हाथी हाथी खंभे जैसा, हाथी के पैर खंभे जैसा नहीं कहा, हाथी खंभे जैसा है, किसी ने कहा हाथी वो तो पूंछ पकड़ ली, तो हाथी तो रस्सी जैसा है, किसी ने वो तो हाथी की सूंड पकड़ ली, किसी ने उसके दांत ही पकड़ ले, किसी ने कान ही पकड़ ले, तो पूरा हाथी बस उतना ही है ऐसा कहते, केवल। तो कहते कि इसके द्वारा यानी उस कुनय के द्वारा, दुर्नय के द्वारा पदार्थ को जानते हुए भी उसके विषय में जानने वाले अंधे ही बने रहते, क्योंकि इस दृष्टि भेद से यानी इस एंगल से, इस नय से पदार्थ जितने अंश में प्रतिभासित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है। यानी हमने अनित्य अंश की ओर से पदार्थ को देखा, तो पदार्थ मात्र अनित्य नहीं, वो नित्य भी है, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है, यानी एक अंश है, उसकी एक अवस्था है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंश से और भी कुछ है, और वह दृष्टि भेद पदार्थ के उन अंशों की अपेक्षा ही नहीं करता है, बल्कि अपने द्वारा ग्रहण किए हुए अंश को ही उस पदार्थ की समग्रता समझता है। यानी पूरा पदार्थ बस उस नए ने जो बताया है वैसा पूरा पदार्थ बस उतना ही है, ऐसा कहता है। जैसे हमने अभी आपको अनित्य की बात बताई, तो द्रव्य ही अनित्य है मानते हैं, पूरा द्रव्य अनित्य है, वो नित्य और अनित्य दोनों अंशों को स्वीकार नहीं करता है। अतएव वह दृष्टि भेद पदार्थ का प्रकाशक होते हुए भी अंधकार के समान है। ये पदार्थ का प्रकाशक कर रहे हैं परंतु वह अधूरा है, गलत है, पूरी वस्तु मात्र वैसे ही उतनी ही ऐसा मान लेता है। मंगलकार ने इसी दृष्टि को सामने रखकर अन्य दृष्टि भेदों की अपेक्षा रहित एक दृष्टि भेद को दुर्नय तिमिर संज्ञा दी है, यानी जिसको कहेंगे निरपेक्षा नया मिथ्या, ये संस्कृत वाक्य, यानी जो नए अन्य नयों की सापेक्षता को स्वीकार नहीं करते हैं वो मिथ्या नए है, उसको कुनय और दुर्नय भी कहते हैं। इसे सिद्ध और अरहंत परमेश्वरी ने अपने केवल ज्ञान रूप सूर्य के प्रभा पुंज से जीत लिया है, क्योंकि केवल ज्ञान रूप सूर्य में ऐसा एक भी सम्यक दृष्टि भेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता। अर्थात उसमें सभी सम्यक दृष्टि भेदों का समन्वय हो जाता है, समन्वय आपस में वो तो एक दूसरे से पूरक जो लगते हुए वस्तु को सिद्ध करते हैं,
मिलन
मिलाप हो जाता है, समन्वय हो जाता है। अतएव पदार्थ का पूर्ण प्रकाशक है। सूर्य के उदित होने पर जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभा पुंज के सामने वे सर्वथा एकांत दृष्टियां नहीं ठहर सकती है। उसको एकांत दृष्टि कहते हैं, वो सर्वथा एकांत दृष्टि कहेंगे या मिथ्या एकांत कहेंगे उनको। अतएव केवल ज्ञान विभूषित सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी को केवल प्रभोग निर्जित दुर्नय तिमिर यह विशेषण देना युक्ति युक्त ही है। अब जिन नीचे उसको दिया है दो नंबर का, सकलात्म प्रदेश निविड़ निबद्ध घाति कर्म मेघ पटल विघटन प्रकटीभूत अनंत ज्ञानादि नव केवल लब्धित्वात् जिनः जिनः क्यों कहे कि सकल आत्म प्रदेशों में निबिड़ ऐसे जो निबद्ध जो है यानी बहुत निबिड़ यानी जो चिकली बाउंड्री कहेंगे घाती कर्म रूपी मेघ पटलों का विघटन करके प्रकटीभूत क्या प्रकट हुआ है तो अनंत ज्ञान आदि नव केवल लब्धि प्रकट होने से उनको जिन कहते हैं। दूसरा भी आगे लिखते हैं, अनेक विषम भव गहन दुख प्रापण हेतुन कर्मारातिन जयंती निर्जरयंती इति जिनाहा। यानी वो सभी कर्मों का जीत लिया है, उसकी निर्जरा की, इसलिए उनको जिन कह दिया है। उसके हिंदी में पढ़ेंगे अभी हम। मोह या मिथ्यात्व आत्मा का सबसे अधिक अहित करने वाला है, इसके वश में होकर ही यह जीव अनादिकाल से आत्मस्वरूप को भूला हुआ संसार में भटक रहा है। जब इस जीव को उपदेशादि का निमित्त मिलता है और उससे स्व क्या है और पर क्या है, हित क्या है अहित क्या है इसका बोध करके आत्मकल्याण की ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है, परिणामों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, वह केवल अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए दूसरों के न्याय प्राप्त अधिकारों को छीनने से ग्लानी करने लगता है, उसके पहले बांधे हुए कर्म हल्के होने लगते हैं तथा नवीन कर्मों की स्थिति भी कम पड़ने लगती है। सांसारिक कार्यों को करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचि का अनुभव होने लगता है, तब कहीं समझना चाहिए यह जीव सम्यक दर्शन के सन्मुख हो रहा है, यह पात्रता बताई। फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाए हैं वे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समर्थ कारण नहीं है, यानी वो हुए ही इसलिए सम्यक दर्शन होगा ये बात नहीं हो सकती। इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोह का उपशम करने में समर्थ ऐसे अधकरण अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिए कि यह जीव सम्यक दर्शन को पा सकता है, इनके बिना नहीं। ये तीन करण रूप परिणामों के पश्चात उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन परिणामों में ही मिथ्यात्व के नष्ट करने का सामर्थ्य है। इस तरह जब यह जीव अधकरण रूप परिणामों को उल्लंघन करके अपूर्वकरण रूप परिणामों को प्राप्त होता है तब यह जिनत्व की पहली सीढ़ी पर है, ऐसा समझना चाहिए। यानी अभी करण लब्धि में एंटर कर चुका है, अभी उसको सम्यक दर्शन होने ही वाला है। यही से तो कर्मरूपी शत्रुओं को जीते उसे जिन कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार जिनत्व का प्रारंभ होता है, इसके आगे जैसे जैसे कर्म शत्रुओं का अभाव होता जाता है वैसे वैसे जिनत्व धर्म का प्रादुर्भाव होता जाता है, और 12वें गुणस्थान के अंत में जब यह जीव समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर चुकता है तब पूर्ण रूप से जिन संज्ञा को प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्ठी तो समस्त कर्मों से रहित है, इसलिए अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी कर्म शत्रुओं के जीतने से साक्षात जिन है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रारंभ में अनंत आदि विशेषणों से युक्त अरहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। ये एक नंबर का अभी अपना हुआ, दो नंबर पहले ऊपर पढ़ते हैं।
लगातार छह तक है।
अच्छा छह है, एक एक पढ़ के एक एक कार्य देखेंगे। बारह अंग गिच्छा वियलिय मल मूढ़ दंसनु तिलया विविहवर चरण भूसा पसियउ सुय देवया सुइरम। अर्थ देखेंगे दो नंबर का। जो श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध 12 अंगों से ग्रहण करने योग्य है, अर्थात 12 अंगों का समूह ही जिसका शरीर है। 12 अंग गिज्झा, जो सर्व प्रकार के मल यानी अतिचार और 3 मूर्ताओं से रहित सम्यक दर्शन रूप उन्नत तिलक से विराजमान है। वियलिय मल मूढ़ दंसनुत्तिलया, और नाना प्रकार के निर्मल चारित्र ही जिसके आभूषण है। विविह वर चरण भूषा, ऐसी भगवती श्रुत देवता चिरकाल तक प्रसन्न रहो। सुय देव यानी श्रुत देवता, पसीयौ यानी वो प्रसन्न हो। तीन नंबर, अब गणधर देवों को नमस्कार करते हैं। सयल गण पौम रविणो विविधि विराया विनिसंगा नीराया विपुराया गणहर देवा पसीयंतु। जो सर्व प्रकार के गण, मुनिगण अर्थात ऋषि, यति, मुनि और अनगार, इन 4 प्रकार के संघरूपी कमलों के लिए, अथवा मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन 4 प्रकार के संघरूपी कमलों के लिए सूर्य के समान है। यानी 4 प्रकार जो बताए वो तो ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये मुनियों के 4 प्रकार, अथवा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इस प्रकार भी उसको भी 4 संघ कहते हैं। जो बल, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकार की रिद्धियों से विराजमान होने पर भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित है, मुनिराज ही होते हैं ना वे तो, और जो वीतरागी होने पर भी, यानी यहाँ तो उन्होंने जिसको भी विरोधाभास लगता है, अनेक रिद्धियों से विराजमान होने पर भी दोनों प्रकार से परिग्रह से रहित है, और वीतरागी होने पर भी समस्त भूमंडल के हितैषी हैं, ऐसे गणधर देव प्रसन्न हो गए। 4 नंबर, पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो दानवर सिंहो सिद्धन्तामिय सायर तरंग संघाय धोय मनो। अरे इसका 3 नंबर का विशेषांत रह गया, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, 7 नंबर के पृष्ठ पर ये 3 नंबर की बात चल रही है। इस मंगल रूप गाथा में विविधि विराया विनिसंगा तथा नीराया विपुराया, इन 2 पदों में विरोधाभास अलंकार है, अभी हमने उसकी चर्चा की थी। जो नाना प्रकार की रिद्धियों से विराजमान है वे संग अर्थात परिग्रह रहित कैसे हो सकता है? उसी प्रकार जो नीराग अर्थात वीतराग है उनके कुत्सित अर्थात खोटा राग कैसे हो सकता है? इसका विरोध परिहार इस प्रकार कर लेना चाहिए, गणधर देव विविधि विराया वि अर्थात बल, बुद्धि आदि नाना प्रकार की रिद्धियों से युक्त होने पर भी निसंगा अर्थात सब प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से तथा रिद्धियों के उपयोग से रहित होते। रिद्धियां तो प्राप्त है परंतु वो तो रिद्धियां उपयोग में लाने की उनके कोई राग नहीं है वहां पर। उसी प्रकार वे निराया भी अर्थात वीतराग होने पर भी कुराया अर्थात भूमंडल में रहने वाले समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं, अथवा वीतराग होने पर भी अभी पृथ्वी मंडल पर विराजमान है, मोक्ष को नहीं गए हैं। देखो ये रिद्धियों के बारे में हमने वहाँ पढ़ा था, मोक्ष शास्त्र के आधार से मैंने पुस्तक में लिख के रखा है। ये बुद्धि रुद्धि होती है वो 18 प्रकार की बताई है, क्रिया रिद्धि है उसमें आकाशगामिनी रिद्धि और चारण रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि होती है वो 11 प्रकार की है, एक तप रिद्धि है वो 7 प्रकार की है, बल रिद्धि वो मनोबल वचन बल काय बल वाले तीन बल वृद्धि होती है। औषध रिद्धि 8 प्रकार की होती है। रस रिद्धि भी 6 प्रकार की होती है। ऐसे क्षेत्र रिद्धि भी होती है। ये अलग अलग रिद्धि रस 6 प्रकार की, रस रिद्धि 6 प्रकार की। आपने लिखा है क्या?
नहीं,
बुद्धि रिद्धि
वो कितनी है?
18 प्रकार।
अच्छा।
नहीं, उन्होंने नहीं लिखा है, मैंने मेरे पुस्तक में लिखा है। मोक्ष शास्त्र के 255 पेज के आधार से रिद्धियां वहां से गिनाई है। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की।
पेज कितने?
ये कोष्ठ बुद्धि वगैरह आती है ना बात। पेज नंबर 255 मोक्ष शास्त्र। हाँ, बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि वगैरह।
विक्रिया,
अभी क्रिया और विक्रिया ऐसे दो है उसमें।
अच्छा।
हाँ, क्रिया रिद्धि में आकाशगामिनी और चारण रिद्धि होती है और विक्रिया रिद्धि अलग से 11 प्रकार की होती है। एक तप रिद्धि होती है वो 7 प्रकार की है। उसके प्रकार नहीं लिखे मैंने यहाँ पर। हाँ, तप रिद्धि। एक बल रिद्धि है 3 प्रकार की है। हाँ, औषध रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि लास्ट वाली है। हाँ, उसके डिटेल्स नहीं बताए। औषध रिद्धि 8 प्रकार की है। रस रिद्धि 6 प्रकार की है। अब 4 नंबर का जो हमने अभी श्लोक पढ़ा था ना, अभी धर्मसेन आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि तो लिखने वाले तो वीरसेन स्वामी ने ये बात रचना की है ना।
ठीक
की है। जो परवादी रूपी हाथियों के मद की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ सिंह के समान है।
यानी सिंह भी हाथी को मारता है।
हाँ, सामने सामने से नहीं, अगर वो तो वो उसके ऊपर चढ़ जाए तो उसका मस्तक प्रहार करके उसको परास्त कर देता है। इसलिए जो परवादी रूपी हाथियों के मद की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ सिंह के समान है, अर्थात जिस प्रकार सिंह के सामने मदोन्मत्त भी हाथी नहीं ठहर सकता। मदोन्मत्त क्यों कहते हैं? कि हाथी में ऐसे वो मद का उन्माद हो जाता है पागल के जैसे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मदोन्मत्त हाथी कहते हैं। तो सिंह तो उसको भी परास्त कर देता है, हाथी नहीं ठहर सकता, किंतु वह गलित मद होकर भाग खड़ा होता है। उसी प्रकार जिनके सामने अन्य मतावलंबी अपने आप गलित मद हो जाते हैं, उनका मद गल जाता है। गलित मद होना है, मद गल जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, और सिद्धांत रूपी अमृत सागर की तरंगों के समूह से जिनका मन धुल गया है, अर्थात सिद्धांत के अवगाहन से जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्री धर्मसेन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हो।
मैंने धर्मसेन आचार्य को मद गला है, उनका गल गया ऐसा बता रहे हैं, और मतलब वो शेर के समान है वगैरह वगैरह।
यानी धर्मसेन आचार्य सिद्धांत के जानकार थे, उनके सामने अन्य मतावलंबी कोई ठहर नहीं सकते थे, उनका मत गल जाता था, यानी वो तो जीत लेते थे सबको। उसके बाद पुष्पदंत आचार्य को बता रहे, 5 नंबर को पढ़ेंगे पहले। प्रणमामि पुष्पदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धयार रविं भग्गशिवमग्गकण्टय मिशिशमिय वयं सयादन्तम्। जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं, जो कुनई रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है, दुन्नय अंधयार रविम है ना, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के कंटकों को, मोक्ष मार्ग के कंटकों ने मिथ्योपदेशादि प्रतिबंधक कारणों को भग्न अर्थात नष्ट कर दिया है, यानी खोटा उपदेश। ये क्या है? मोक्ष मार्ग का प्रतिबंधक कारण है, उसके लिए उसको मोक्ष मार्ग का कंटक कह दिया, तो उसको नष्ट कर दिया है। भग्ग शिवमग्ग कंटयस कंटयम, जो ऋषियों की समिति अर्थात सभा के अधिपति है, इसी समय वयम सयादंतम, और जो निरंतर पंचेंद्रियों का दमन करने वाले हैं, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को मैं यानी वीरसेन प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वीरसेन आचार्य की रचना है और वो सबको नमस्कार कर रहे हैं। छह नंबर को देखते हैं, यहाँ भी भूतबली आचार्य को नमस्कार कर रहे प्रणमः कय भूय बलिम भूय बलिम केशवास परिभूय बलिम विनिहयवम महापसरम वर्धाविय विमलनान बम महापसरम। जो भूत अर्थात प्राणी मात्र से पूजे गए हैं, भूय बलिम, बलि का अर्थ होता है पूजा, अथवा भूत नामक व्यंतर जाति के देवों से पूजे गए हैं, जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात संयत सुंदर बालों से वली अर्थात जरा आदि से उत्पन्न होने वाली शिथिलता को परिभूत अर्थात तिरस्कृत कर दिया है। यानी वो भूय और बलि के ऊपर उन्होंने जिसको कहते हैं, हाँ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ ले, हाँ श्लेषलंकार, यानी परिभूय वलिम, वली यानी जो बुढ़ा में बुढ़ापे में जो झुर्रिया निकलती है ना, तो उन्होंने अपने संयम के कारण उसको जीत लिया, इस तरह से तिरस्कृत कर लिया। जिन्होंने कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया और जिन्होंने निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा दिया, ऐसे भूतबली नामक आचार्य को प्रणाम करो। अब पहले ये मंगलाचरण रूप उन्होंने अरिहंत सिद्धों को, श्रुत देवता को, गणधरों को, फिर दर्शन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य को नमस्कार किया है। तो ये जो मंगल उन्होंने बनाया यहाँ बताया है, अब उसके लिए यहाँ लिखते हैं मंगल क्यों करना वगैरह, उसकी बात यहाँ करेंगे। ये विशेषार्थ किसका दिया है, इसी का विशेषार्थ है ना, छह नंबर का। जिस समय भूतबली आचार्य ने अपने गुरु धरसेन आचार्य से सिद्धांत ग्रंथ पढ़कर समाप्त किया था, उस समय भूत नामक व्यंतर देवों ने उनकी पूजा की थी, इसका उल्लेख धवला में आगे स्वयं किया गया है। अब ये ग्रंथ की शुरुआत होती है, वहां क्या क्या बातें होती है उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। एक नंबर, मंगल निमित्त हेहु परिमाणम नामतः यकत्तारम वागरी छप्पी पच्छा वखाणौ सत्समाइरियो। देखो यहाँ कौन कौन सी छह बातें पहले बताएंगे। मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता, इन छह अधिकारों का व्याख्यान करने के पश्चात आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करे। करें ऐसे नियम है कि कोई भी शास्त्र रचना का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगल करना चाहिए, यानी मंगलाचरण करेंगे, फिर किसके छप्पी, हाँ बीच में वो गैप है, छप्पी पच्छा यानी उसके छह के पश्चात। तो पहले में पहले क्या क्या करना है, तो एक है तो मंगल, फिर निमित्त, किस निमित्त से शास्त्र बनाए, उसका हेतु क्या है, परिमाण यानी कितनी संख्या में शास्त्र बनाएंगे, उन शास्त्र का नाम क्या है और उनके कर्ता कौन है। इन छह अधिकारों का व्याख्यान करने के पश्चात, यानी छह बातें बताने के बाद ही आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करें। तो विशेषार्थ, शास्त्र के प्रारंभ में पहले मंगलाचरण करना चाहिए, सबसे पहले मंगलाचरण होता है। पीछे जिस निमित्त से शास्त्र की रचना हुई हो उस निमित्त का वर्णन करना चाहिए। इसके बाद शास्त्र प्रणयन, प्रणयन यानी रचना, रचना शास्त्र की रचना, शास्त्र प्रणयन के प्रत्यक्ष और परंपरा हेतु का वर्णन करना चाहिए, यानी वो शास्त्र का हेतु क्या है रचने का, निमित्त ने किसके लिए बनाया, कोई शिष्य है, जैसे वो आता है ना प्रभाकर भट्ट करके, वो बात आती है उसमें परमात्मा प्रकाश में आती है ना कि योगुन रचा है उसको, तो यानी ये क्यों रचा है वो हेतु का वर्णन करते हैं। अनंतर शास्त्र का प्रमाण बताना चाहिए, ये सब यहाँ आगे बताएंगे। ये अभी 8 नंबर के पेज पर अभी मंगलाचरण अभी तो करने वाले, नमो अरिहंतानम वो करेंगे, ये मूल षटखंडगम की बात है। फिर निमित्त बताएंगे, ये सब आगे 55-56 वगैरह पेजों पर आने वाला है। परिमाण बताया 61 पेज पर, नाम बताया 61 पेज पर, कर्ता भी वहीं पर बताया। तो शास्त्र का प्रमाण बताना चाहिए, फिर ग्रंथ का नाम और आमनाय क्रम से उसके मूल कर्ता, आमनाय क्रम यानी जो परंपरा जो चली आई है हमेशा के, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, तो ये उनकी परंपरा, आचार्य उनकी परंपरा से आज तक है। फिर आज के उस ग्रंथ कर्ता का नाम बताएंगे, इसलिए कहते हैं आमनाय क्रम से उसके मूल कर्ता, उत्तर कर्ता और परंपरा कर्ताओं का उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद ग्रंथ का व्याख्यान करना उचित है। ग्रंथ रचना का यह क्रम आचार्य परंपरा से चला रहा है और इस ग्रंथ में भी इसी क्रम से व्याख्यान किया गया है। आचार्य परंपरा से आए हुए इस न्याय को मन में धारण करके और पूर्वाचार्यों के आचार अर्थात व्यवहार परंपरा का अनुसरण करना रत्नत्रय का कारण है, ऐसा समझकर पुष्पदंत आचार्य सकारण मंगलादिक छहों अधिकारों का व्याख्यान करने के लिए मंगल सूत्र कहते हैं। यानी यहाँ से अभी ग्रंथ के प्रारंभ हुआ, षटखंडागम का प्रारंभ यहाँ से, यह टीका का प्रारंभ तो अभी हमने पढ़े, उसके मंगलाचरण भी पढ़े, कुछ कुछ ये सब बताए, ये टीका चल रही है, पर अभी यहाँ जो ये सूत्र रूप जो है वो प्रथम सूत्र की बात यहाँ जो है ये मंगलाचरण रूप से है, पढ़ेंगे हम उसको। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। अब जो अरिहंताणम है ना उसके लिए अरहंताणम ऐसा भी शब्द आता है और अरिहंताणम भी आता है, उसका अर्थ लिखा है। ये मंगलाचरण का, ये यहाँ से मंगलाचरण, ये षटखंडागम का मंगलाचरण है। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये सूत्र रूप गाथा है ना, इसे 2 लाइन में लिखी हुई है, इसलिए हम वैसा ही गाते हैं। वैसे तो उसको 5 पदों में अलग अलग लिखा जाता है, मतलब इसकी रचना इस तरह से है। विशेषार्थ, यह मंगल सूत्र, इसको सूत्र कहते हैं, हाँ, नमोकार मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतिम भाग में जो लोए अर्थात लोक में और सव अर्थात सर्व पद पाए हैं, आए हैं, पद यानी शब्द, उनका संबंध नमो अरिहंतानम आदि प्रत्येक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिए। इसका खुलासा आचार्य ने स्वयं आगे चलकर किया है, हमने बहुत बार देखा ना, इसको अंत मंगल कहते, अंत्य दीपक कहते, अंत्य मंगल नहीं, अंत्य दीपक। ये मंगल तो आदि है, ये ग्रंथ के शुरुआत में क्या है वो आदि मंगल है, ग्रंथ के अंत में करेंगे वो अंत्य मंगल है। मुझे अंत्य दीपक कहना था। एक होता है आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक, आचार्य बताएंगे उसकी बात। अब इस पर प्राकृत में भी हम कहेंगे, कथमिदं सुप्तं मंगल निमित्त हेवु परिमाण नाम कत्ताराणं सकारणानं पूर्वयम् न ताल पलंब सुप्तं व देशामासीय तादो। अच्छा, ये हम नहीं पढ़ते थे ना। शंका, यह सूत्र सकारण मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता का प्ररूपण करता है, यह कैसे संभव है? शंकाकार का यह अभिप्राय है कि सूत्र में जबकि केवल मंगल अर्थात इष्ट देवता को नमस्कार किया है, तब उससे निमित्त आदि अन्य पांच अधिकारों का स्पष्टीकरण कैसे संभव है? यहाँ तो मात्र ये तो परमेश्वर को याद किया या नमस्कार किया है, तो ये मंगल क्या ऐसा कहो तो ये सभी उसमें कैसे आ गए, ये पूछना चाहते हैं। समाधान, उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह मंगल सूत्र ताल प्रलंब सूत्र के समान देशामर्शक होने से सकारण मंगलादि छह अधिकारों का प्ररूपण करता है। यानी एक देश का कथन हुआ तो उसमें संपूर्ण समझना चाहिए, इसको ताल प्रलंब कहेंगे। देशामर्शक का अर्थ क्या, देश यानी एक देश, नाम लिया एक देश का और हमने पूरी वस्तु को या सबको समझ लिया। मराठी में ता से ताक बात समझना चाहिए, हाँ ऐसा यहाँ कहते हैं। विशेषार्थ, जो सूत्र अधिकृत विषयों के, अधिकृत विषय ने जो हम current. सभी जो करंट विषय, एक देश कथन द्वारा, कथन में तो एक देश का ही कथन आया, समस्त विषयों की सूचना करे, उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। मैंने कथन किया पार्शली और उसमें संपूर्ण विषय की सूचना आ जाती है, इसलिए ताल प्रलंब सूत्र के समान यह मंगल सूत्र भी देशामर्शक है। यानी भले इसमें हमें लगता है कि ये मात्र मंगल है, परंतु इसमें वो छह अधिकार आ गए, ये कहना चाहते हैं। कल्प सूत्र के कल्प्याकल्प नामक प्रथम उद्देश्य के प्रथम सूत्र में ताल पलंब पद आता है, जिसका भाव यह है कि ताड़ वृक्ष को आदि लेकर जितनी भी वनस्पति की जातियां हैं उनके अभिन्न यानी बिना तोड़े या काटे गए और अपक्व या कच्चे अर्थात सचित्त मूल पत्र फल पुष्प आदि का लेना साधु को योग्य नहीं है। इस सूत्र में तो केवल ताल पलंब पद ही दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृक्ष जाति और उसके पत्र फुलादिकों का ग्रहण किया गया है। यानी मुनियों को ये ग्रहण करना योग्य नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं, और उसके लिए ताल प्रलंब इतना ही कह दिया। तो एकमात्र ताड़ वृक्ष की बात नहीं, सभी वनस्पतियों की बात है। उसी प्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामर्शक होने से मंगल के साथ अधिकृत निमित्त हेतु परिमाण और कर्ता का भी बोधक है। छह कोण हमने देखे, निमित्त हेतु परिमाण, हाँ, नाम और कर्ता,
मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम कर्ता,
हाँ नाम, नाम नहीं रह गए
उसमें, नाम नहीं लिया,
नाम नहीं लिया, नाम, नाम बताएंगे बाद में। हाँ, अभी हम आते हैं 10 नंबर के पृष्ठ पर। उन उक्त मंगलादि छह अधिकारों में से पहले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा मंगल का प्ररूपण किया जाता है। यानी इसमें छह बातें बताएंगे। उनमें भू धातु सत्ता अर्थ में है, इसको आदि लेकर समस्त पदार्थों की अवस्था के वाचक शब्दों का जो मूल कारण है उसे धातु कहते हैं। उनमें से मगी धातु से मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है, अर्थात मगी धातु में अलच प्रत्यय जोड़ देने से मंगल शब्द बन जाता है। यानी यहाँ धातु की बात बता रहे
हैं, उत्पन्न हुआ
मंगल, मंगल शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, मंगल शब्द के ऊपर ये छह बातें बताएंगे। शंका, यहाँ धातु का निरूपण किस लिए किया जा रहा है? शंकाकार का यह अभिप्राय है यह ग्रंथ सिद्धांत विषय का प्ररूपक है, इसलिए इसमें धातु के कथन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका कारण तो, इसका कथन तो व्याकरण शास्त्र में करना चाहिए। समाधान, ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो शिष्य धातु से अपरिचित है, अर्थात किस धातु से कौन शब्द बना है इस बात को नहीं जानता है, उसे धातु के परिज्ञान के बिना विवक्षित शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। और अर्थबोध के लिए विवक्षित शब्द के अर्थ का ज्ञान कराना आवश्यक है। देखो हम देखते ना, यहाँ हमारे अभी कितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आते हैं, तो हमारे जो कोई शब्द है वो कैसे तैयार होते हैं उनको तो पता नहीं है, इसलिए उन शब्दों का सही अर्थ उनको भाषित नहीं होता। और हम तो उन धातुओं से परिचित है कि ये शब्द कैसे तैयार हुआ, तो ये शब्द का अर्थ हमको ज़्यादा ठीक लगता है या ज़्यादा भाषित हो जाता है। यहाँ पर वही कहते हैं कि कौन से धातु से कौन सा शब्द तैयार हुआ वो बताएंगे तो उसका अच्छी तरह से ज्ञान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर धातु का निरूपण किया गया है। कहा भी है, ऊपर उन्होंने ये लिखा है, शब्दात् पद प्रसिद्धि ही पद सिद्धेर अर्थ निर्णयो भवति, अर्थात तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् परम श्रेयः। शब्दात् पद प्रसिद्धि, शब्द से पद की प्रसिद्धि होती, नीचे अर्थ दिया देखो, शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके अर्थ का निर्णय होता है, अर्थ निर्णय से तत्वज्ञान अर्थात हेय उपादेय विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक यानी वो भेद विज्ञान है, भेय हितकारी अहितकारी, और तत्वज्ञान से परम कल्याण होता है। क्योंकि हम भी ये जो शब्दों के लिए नहीं, शब्दों को नहीं जानना है, शब्दों के द्वारा हमको उसके अर्थ भाषित हो जाए तो ये स्वपर भेद विज्ञान के लिए परम कल्याणकारी है, इसलिए हमको ये तत्वज्ञान को जानना है। अब उसमें उन्होंने मंगल की बात की, ये नहीं, वो तो ये हो गया ना, पहले पहले धातु बताएं, मंगल में उन्होंने धातु कौन सा है वो बता दिया, मगी धातु बताया और उसके कुछ प्रत्यय हो जाते हैं वो मंगल शब्द बन जाता है। अब दूसरी बात कौन सी बता रहे हैं, निक्षेप की। देखो पेज नंबर 10 पर, आपके पास पुस्तक नहीं है, अच्छा ओ, पहली लाइन में उन्होंने मंगल के बारे में छह बातें बताई, एक उसका धातु कौन सा है, फिर दूसरी बात निक्षेप, फिर तीसरी बात नय, फिर उसके एकार्थवाचक कौन से शब्द है वो, निरुक्ति वो शब्द कैसे तैयार हुआ और उसके अनुयोग, ये मंगल शब्द के बारे में बताएंगे। तो पहले हमने वो धातु देखा, अब निक्षेप बता रहे, जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करता है, क्षेप निक्षेप, क्षेपण यानी डालना, अर्थात अनिर्णित वस्तु का उसके नामादिक द्वारा निर्णय कराता है उसे निक्षेप कहते हैं। और ये जो निक्षेप है वे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, हमेशा हम तो निक्षेप के चार ही भेद देखते हैं ना, यहाँ तो छह भेद बताए। हम क्या क्या देखते हैं, हमेशा देखते हैं नाम, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इसमें काल और क्षेत्र भी डाले। देखो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार का है। कौन? निक्षेप। अने नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप, और उसके संबंध से मंगल भी छह प्रकार का हो जाता है। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। अब यहाँ ऊपर एक श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। उच्चार्यमथ पदम निक्षेवं वाकयम् तु दष्टून अर्थम नयन्ति तच्छन् तमिधि तदोते नया भनिया। पहले निक्षेप और बाद में नय की बात बताइए। उच्चारण किए गए अर्थ पद, अर्थ पद यानी पद यानी शब्द, उससे के द्वारा ये पदार्थ के संबंध में जो कोई पद है, शब्द है, उच्चारण किए गए अर्थ पद और उसमें किए गए निक्षेप को देखकर अर्थात समझकर पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुंचा देते हैं, इसलिए वे नय कहलाते। अभी यहाँ नय की बात बताएं, निक्षेप की तो बात है, निक्षेप करते हैं, निक्षेप तक पहुंचाते हैं या उसमें रखते हैं, क्षेपण करते हैं, उसको निक्षेप कहा था। उसके छह भेद बताए। अभी यहाँ नय की बात बता रहे कि जो हमने जो अर्थ यानी शब्द बोले हैं और उसके जो निक्षेप को देख कर यानी समझ कर पदार्थ के निर्णय तक पहुंचा देते उसको नय कहेंगे। विशेषार्थ, आगम के किसी श्लोक, गाथा, वाक्य अथवा पद के ऊपर से अर्थ निर्णय करने के पहले निर्दोष पद्धति से श्लोकादि का उच्चारण करना चाहिए, तदनंतर पदच्छेद करना चाहिए। क्या कहते हैं? पहले जैसे लिखा है वैसा, जैसे हमने ऊपर लिखा उच्चार्यमत्थ पदम, तो उसका पद निकल, उसके बाद क्या करना, पदच्छेद यानी हम संधि तोड़कर उसको समझना चाहिए। इसे उच्चार्यम अत्थ पदम इस तरह से, ये तो संधि पूर्वक लिखा जाता है, पहले स्पष्ट उसको पढ़ना, फिर उसको तोड़ तोड़ कर उसको समझना, उसके बाद उसका अर्थ कहना चाहिए, अनंतर पद निक्षेप अर्थात नामादि विधि से, यानी जो अभी हमने देखे ना नाम, स्थापना, द्रव्य, वो सब बताना चाहिए, उसको कहेंगे निक्षेप करना। नयों का अवलंबन लेकर पदार्थ का ऊहापोह करना चाहिए। ऊहापोह ने चर्चा, डिस्कशन, आप क्या कह रहे हैं? ऊहापोह करने की तो उसके जो अलग अलग पद्धति उस पर चर्चा करना, उसको ऊहापोह कहते हैं।
ऊहापोह मतलब डिटेल में जैसे प्रोज एंड कॉन्स,
हाँ, दोनों ओर से उसके जैसे ऊहापोह। तो विविध नये पता है ना, जैसे नित्य भी अनित्य भी, तो इससे ये तो अनेक नयों के द्वारा पदार्थों की सभी ओर से सर्वांगीण चर्चा करना, उसको वहां पोह कहेंगे। तभी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय होता है। पदार्थ निर्णय के इस क्रम को दृष्टि में रखकर गाथाकार ने अर्थ पद का उच्चारण करके और उसमें निक्षेप करके, पहले बताया ना उच्चार्यम अत्थ पदम, पहले अत्थ पद का उच्चार किया, फिर निक्षेवम निक्षेप करके नयों के द्वारा, नय किसको कहते वो तो पहले बताया, फिर कहते नयों के द्वारा तत्व निर्णय का उपदेश दिया है। गाथा में अत्थ पदम इस पद से पद, पदच्छेद और उसका अर्थ ध्वनित किया है, यानी अर्थ पद में वो सब ले लिया उन्होंने, उसका उच्चारण भी करना है, उसका पद का जो छेद भी करके और उसका अर्थ भी समझना चाहिए। जितने अक्षरों से वस्तु का बोध हो उतने अक्षरों के समूह को अर्थ पद कहते हैं। हमने पहले भी देखा है ना, पद के तीन भेद होते हैं, अर्थ भेद, अर्थ पद होते हैं, प्रमाण पद होते हैं, मध्यम पद होते हैं, यानी ये अलग अलग अक्षरों का हमने समूह इकट्ठा किया और उसके हमके कोई पदार्थ का बोध हुआ। क एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल एक अक्षर है, कमल, तो हमने वो अक्षरों के समूह एक पद तैयार हुआ, उससे हमके उसका कुछ अर्थ बोध हो जाता है। जैसे कमल सुगंधित है, तो ये अलग अलग अक्षरों के जोड़ जोड़ कर हमने शब्द बनाए और शब्दों के द्वारा हमें कुछ अर्थ भाषित हुआ। निक्षेपम स्पर्शे निक्षेप विधि की बताए ना, छह प्रकार के निक्षेप, उसकी विधि की बात बताइए। और अत्थम नयंति तच्चत्तम तच्चत्तम इत्यादि पदों से पदार्थ निर्णय के लिए नयों की आवश्यकता बतलाई गई है। वो तो नयति नयति ने वो ले जाते हैं, निर्णय तक पहुंचाते हैं, उसको नय कह ले। पूर्वोक्त वचन के अनुसार पदार्थ में किए गए निक्षेप को देखकर नयों का अवतार होता है। क्या कहते हैं, यानी निक्षेप हमने पदार्थ में तो अलग अलग भेद भेद डाले, अब उसको जानने वाला वो नय होता है। निक्षेप वो वस्तु में गेयों में होते हैं और नए ज्ञान में होते हैं। अब वो नए किसे कहते हैं वो कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सो कनम सदा देत हो लक्ष्मी।